लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे क्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विगत कुछ समय से हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित 150 भजनों के संग्रह यानी स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या करते रहे थे। स्तोत्र ग्रंथ के बाद बाइबल धर्मग्रंथ में सूक्ति ग्रंथ को रखा गया है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में सदाचार संबंधी सूक्तियां सम्मिलित हैं। इसमें प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्णन का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। मनुष्य यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक है, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुखी और संपन्न बन सकता है। श्रोताओं, प्राचीन व्यवस्थान में निहित राजाओं के पहले ग्रंथ के 5वें अध्याय के 9 से लेकर 14 तक के पदों में सुलेमान के विषय में लिखा है। ईश्वर ने सुलेमान को प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया। सुलेमान की प्रज्ञा सब पूर्वीय लोगों और मिस्र की समस्त प्रजा से भी श्रेष्ठ थी। वह अन्य सब मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान था। उसके द्वारा कही गई सूक्तियों की संख्या 3000 थी और गीतों की 1005। सब राष्ट्रों से तथा पृथ्वी भर के राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की चर्चा सुनी थी, लोग उसकी प्रज्ञा सुनने आया करते थे। सूक्ति ग्रंथ के संक्षिप्त परिचय में हम यह बता दें कि सूक्ति ग्रंथ के पहले 9 अध्यायों में प्रज्ञा संबंधी उपदेश निहित हैं। इसके बाद सुलेमान के 2 सूक्ति संग्रह और इनके अतिरिक्त कई अन्य ज्ञानियों की सूक्तियां भी इस ग्रंथ में मिलती हैं। बाइबल पंडितों का मानना है कि राजा सुलेमान की सूक्तियों को उनके शासनकाल के बाद लिपिबद्ध किया गया था। यही कारण है कि सूक्ति ग्रंथ के 25वें अध्याय के पहले श्लोक में यह उल्लेख है कि यह संकलन कार्य 717-687 ईसा पूर्व के राजा हिजकिय के राजकाल में सम्पन्न हुआ। सूक्ति ग्रंथ पाठक के समक्ष धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसमें परामर्श दिया गया है कि मनुष्य सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता तथा सर्वपालक ईश्वर की भक्ति कर बुराई से दूर रह सकता है तथा अपने जीवन को सुखी बना सकता है। इस ग्रंथ में स्मरण दिलाया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर और स्वाधीन आत्मा प्रदान की है, अस्तु वह अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार ईश्वर की आज्ञाओं के पालन अथवा उनके उल्लंघन के लिए स्वतंत्र है। ईश आदेशों के पालन हेतु मार्गदर्शन देकर यह ग्रंथ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन मनुष्य के लिए अहितकर है। जबकि ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में ही इस धरती पर मनुष्य की सच्ची प्रज्ञा और स्वर्ग में उसका सच्चा कल्याण निहित है।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ में अनेकानेक विषयों पर सूक्तियां उपलब्ध हैं। वस्तुतः सूक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है उपयुक्त कथन या ऐसी उक्ति या वचन जो अच्छा लगे, अच्छे और सुंदर ढंग से कही गई कोई उत्तम एवं सुंदर बात। बाइबल धर्म ग्रंथ के सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा और मूर्खता, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार, ईमानदारी और बेईमानी, प्रेम और घृणा, धैर्य और क्रोध, संपन्नता और निर्धनता, कर्मण्यता और अकर्मण्यता के बीच अंतर दर्शाकर प्रभु भक्तों और सेवकों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सूक्ति ग्रंथ में माता पिता और संतान, राजा और प्रजा आदि के पारस्परिक संबंध विषयक सूक्तियां निहित हैं। अनेक सूक्तियां ईश्वर पर श्रद्धा, पड़ोसी से प्रेम, सदाचार, संयम, विवेक आदि सद्गुण धारण करने का अनुरोध करती हैं तथा दुर्गुणों से सावधान रहने की चेतावनी देती हैं। श्रोताओ, इस प्रकार सूक्ति ग्रंथ का उद्देश्य लोगों को सदाचारी जीवन के वर्ण की प्रेरणा देना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु लेखक बारंबार ईश भक्ति पर बल देता है जो सद्गुणों का स्रोत है। यह ग्रंथ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा ही धार्मिकता और सदाचार का आधार है। लगभग 35 पृष्ठों वाला सूक्ति ग्रंथ 31 अध्यायों में विभाजित है। इसमें प्रज्ञा का निमंत्रण देने के बाद राजा सुलेमान और अन्य ज्ञानियों की सूक्तियों को शामिल किया गया है, जिसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। इसराइल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की सूक्तियां, जिससे मनुष्य प्रज्ञा और अनुशासन ग्रहण करे, गंभीर वचनों का अर्थ समझे, संयमपूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा, न्याय, कर्तव्य बोध और सच्चाई प्राप्त करे। श्रोताओ, बाइबल आचार्यों का कहना है कि हालांकि सूक्ति ग्रंथ का प्रारंभ सुलेमान की सूक्ति से होता है, तथापि इस ग्रंथ की सभी सूक्तियां राजा सुलेमान को ध्यान में रखकर नहीं रची गई हैं, इसलिए कि अधिकांश नीति वचन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व रचे गए थे, जब इसराइल एकता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण एक चिंतनशील राज्य था। इस प्रकार राजा सुलेमान और अन्य ज्ञानियों की सूक्तियों को प्रस्तुत करने के उपरांत सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय में आगुर की सूक्तियां शामिल की गई हैं। इसमें सच्चरित पत्नी की प्रशंसा की गई है तथा संख्यात्मक सूक्तियों द्वारा प्रज्ञा के मोती पाठकों में बांटे गए हैं। जैसे 30वें अध्याय के 24 से लेकर 28 तक के पदों में मनुष्यों का ध्यान इन प्राकृतिक तथ्यों के प्रति आकर्षित कराया गया है। लिखा है, पृथ्वी पर चार प्राणी बहुत छोटे किंतु बड़े समझदार होते हैं। चींटियां निर्बल होती हैं किंतु फसल के समय अपना भोजन एकत्र करती हैं। बिज्जू बलशाली नहीं होते किंतु चट्टानों में अपना घर बनाते हैं। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। छिपकली हाथ से उठाई जा सकती है किंतु वह राजाओं के महलों में पाई जाती है। श्रोताओ, इसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ के 31वें यानी कि अंतिम अध्याय में बुराई से दूर रहने और भलाई के कार्यों में लगने का परामर्श दिया गया है। राजा लमुएल, जिन्होंने अपनी माँ से ज्ञान के मोती अर्जित किए थे, अपनी माँ द्वारा कही गई कुछ उपयोगी बातों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा चेतावनी देते हैं कि ईश्वर द्वारा सृजित प्रत्येक प्राणी भला है, हर चीज भली है, हालांकि उनका दुरुपयोग किया जाता है। वे सच्चरित पत्नी की प्रशंसा करते हैं, जबकि लंपट और व्यभिचारिणी से दूर रहने का परामर्श देते हैं। इन सूक्तियों में माता पुत्र को सचेत कर कहती हैं, पुत्र मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र, अपना पौरुष स्त्रियों पर व्यय मत करो और न राजाओं को भ्रष्ट करने वाली स्त्रियों पर अपना धन गवाओ। लमुएल न तो राजाओं को अंगूरी शोभा देती है और न शासकों को मदिरा, क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते हैं और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं। इसलिए मुंह खोलकर न्याय सम्मत निर्णय दो, दीन दरिद्रों के पक्ष का समर्थन करो।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, न ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 109वें सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में संत पापा ने कहा कि यह सम्मेलन सामाजिक और आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय में आयोजित किया गया है, जब पूरी दुनिया में गंभीर और कठिन चुनौतियां हैं। उन्होंने महामारी के इस समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा सबसे कमजोर भाई बहनों पर विशेष ध्यान दिए जाने की सराहना की। उन्होंने अपना विचार पेश करते हुए कहा, इस लगातार संकट के समय में हमें सार्वजनिक भलाई के लिए विशेष देखभाल की जरूरत है। कई संभावित और अपेक्षित उथल पुथल अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, अतः सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की जरूरत है। संत पापा ने बेरोजगारी और सार्वजनिक सेवाओं तथा कई व्यवसायों में कठिनाइयां बढ़ने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, 2020 में हमने पूरी दुनिया में रोजगार का अभूतपूर्व नुकसान देखा। आइए हम कोविड-19 भय के अंत में वृहद आर्थिक गतिविधियों की ओर लौटने से पहले लाभ अलगाव राष्ट्रवाद, अंधे उपभोक्तावाद और हमारे समाज में अपने भाइयों और बहनों के खिलाफ निरर्थक भेदभाव निर्धारित करने से बचें। उन्होंने कहा, दूसरी ओर हम उस समाधान के लिए कार्य करें जो रोजगार के नए भविष्य का निर्माण करने में मदद देगा, जो सभ्य और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों के आधार पर सामूहिक बातचीत से उत्पन्न एवं सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने हेतु रोजगार को समाज और निर्माण के लिए हमारी देखभाल का एक अनिवार्य घटक बना देगा। संत पापा फ्रांसिस ने इटली के अक्विला महाधर्म प्रांत के फादर लुइजी मारिया एपिकोको को वैटिकन संचार विभाग के लिए कलीसियाई सहायक एवं ओसल्वातोरे रोमानो का संपादक नियुक्त किया। लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित संत जोसेफ के चक्कर अगस्त 2020 में डोकसाइट ब्लास्ट के बाद अगले माह फिर खुल जाएगा। विनाशकारी विस्फोट जिसने लेबनान के बेरूत शहर को तबाह कर दिया था, उसके करीब एक साल बाद अब वहां उल्लास की स्थिति है। गिरजाघर का पुनर्निर्माण कैथोलिक उदारता संगठन एड टू द चर्च इन नीड की सहायता से किया गया है। फादर सल्ला अबोजाबोदीयेसु समाजी ने एड टू द चर्च इन नीड को बतलाया, नई लकड़ी के दरवाजों को अगले सप्ताह के अंत तक लाया और लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी गौर किया कि पेंट करने और बिजली का काम करीब पूरा हो चुका है। पिछले साल के विस्फोट में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे, जब एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पर विस्फोट हो गया था। उधर इटली के तेरामो धर्म प्रांत में 18 से 20 जून तक तीन महत्वपूर्ण अवसरों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर तीन दिवसीय प्रार्थना, चिंतन एवं साथ ही साथ उत्सव भी मनाया जाएगा। शुक्रवार 18 जून को संत गैब्रियल तीर्थस्थल पर कानून प्रवर्तन एजेंसी की जयंती मनाई जाएगी, जो पूरे इटली में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी देते हैं। समारोह में इटली के मिलिट्री संरक्षक मोनसिनियोर संतो मार्चियानो भी भाग लेंगे। वे 10:30 बजे ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे, जिसके बाद पौत्र द्वार में प्रवेश की धमविधि संपन्न की जाएगी तथा संत गैब्रियल के अवशेष के सामने प्रार्थना की जाएगी। शनिवार 19 जून को तीर्थस्थल में 2021 का धर्म प्रांतीय सम्मेलन संपन्न होगा, जिसमें न केवल धर्माध्यक्ष और पुरोहित बल्कि लोक धर्मी और पल्ली प्रेरिताय समिति के सदस्य भी भाग लेंगे। रविवार 20 जून को तीर्थस्थल पर सैकड़ों मोटरसाइकिल चलाने वाले उपस्थित होंगे, जो जयंती समारोह में भाग लेंगे। मोटरसाइकिल चलाने वालों की जयंती मनाने का अर्थ है आवश्यक फंड का निर्माण करना, ताकि सांगो में छोटे बच्चों के लिए एक बहुउद्देशीय शैक्षणिक केंद्र की मदद की जा सके। समारोह में उन सभी मोटरसाइकिल चालकों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी जिन्होंने सड़कों पर अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर कलीसियाओं की विश्व परिषद ने अपनी प्रार्थना में आशा व्यक्त की है कि यह मुलाकात महामारी के बाद की दुनिया के लिए आशा का चिन्ह प्रदान करेगा। राष्ट्रपति पुतिन और बाइडेन द्वारा चर्चा किए गए कई मुद्दे कलीसियाओं के विश्व परिषद के 350 सदस्य कलीसियाओं के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। इन विषयों में महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी परमाणु संघर्ष के बढ़ते खतरे, विशेष रूप से हथियारों के नियंत्रण में घटते सहयोग और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के संदर्भ शामिल हैं। दोनों नेताओं को संबोधित एक खुले पत्र में WCC के कार्यवाहक महासचिव डॉ. लोवान सौका ने उनसे अपील की है कि अपने देशों के बीच तनाव कम करने और संकट दूर करने हेतु एक साथ कार्य करें। उन्होंने लिखा है, हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन एवं शांति के ईश्वर आपको प्रेरित करें और आपके अपने लोगों की भलाई, हमारे स्वतंत्र मानव समुदाय एवं ईश्वर के बहुमूल्य और अनोखे सृष्टि के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु आपका मार्गदर्शन करें। कलीसियाओं के विश्व परिषद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन, पुतिन और विश्व के सभी नेताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, ताकि वे शांति और न्याय के रास्ते को पा सकें। उन्होंने सभी मनुष्यों की भलाई और दुनिया के पर्यावरण की बेहतरी के लिए आग्रह किया है। मुलाकात के उपरांत पुतिन ने पत्रकारों को एक संक्षिप्त रिपोर्ट देते हुए कहा कि सभा निर्माणात्मक थी, उसमें कोई विरोध की भावना नहीं थी और नेताओं ने एक दूसरे के प्रति समझदारी व्यक्त की। ब्राजील में COVID-19 से करीब 17.5 मिलियन लोगों के संक्रमित होने तथा करीब 0.5 मिलियन लोगों की मौत के बाद वह जल्द ही कोरोना वायरस से 5 लाख लोगों के मरने की निराशाजनक सीमा को पार कर जाएगा। बहुत अधिक आशा और सांत्वना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्राजील के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक विशेष प्रार्थना दिवस का आह्वान किया है तथा ब्राजील में मौत के शिकार लोगों की याद करने तथा हर एक जीवन महत्वपूर्ण है के संदेश पर जोर दिया है। यह पहल, जिसको अन्य संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, 19 जून को मनाया जाएगा। उस दिन ब्राजील के सभी धर्म प्रांतों में मृतकों के लिए एक मिस्सा अर्पित किया जाएगा। देश के सभी गिरजाघरों और पल्लियों की घंटियां दोपहर 3 बजे एक साथ बजाई जाएंगी। इस समय को करुणा की घड़ी के रूप में लिया जाता है, जब क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई थी। ब्राजील की कार्तिक कलीसिया के महासचिव एवं रियो डी जनेरियो के सहायक धर्माध्यक्ष जोएल पोर्टेल्ला अमादो ने बतलाया कि इसका अर्थ होगा एकात्मकता, आशा और समर्पण का भाव प्रकट करना, ताकि ब्राजील को एक बेहतर देश बनाया जा सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।